हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आरव आयु से बात करने मंथन के घर पहुंचा था। वहां मंथन की फैमिली ने अच्छा खासा तमाशा लगा रखा था। आरव ने मामले को संभालने के बजाय उल्टा आग में घी डाल दिया था। साक्षी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आरव और आयु वहां साथ में आए थे, ताकि उसकी फैमिली इस बात का इश्यू ना बनाए। उन्हें आयु मंथन के लिए पसंद नहीं थी, ऊपर से अब तो उसकी आरव से शादी हो गई थी। सबको लगा आरव मामले को संभाल लेगा, लेकिन उसने सब गड़बड़ कर दी। साक्षी आंखों ही आंखों में आरव से यही विनती कर रही थी वो उस बात को और न बढ़ाए। आरव ने बेपरवाही से कहा, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा ना, कहने को ये मेरी वाइफ जरूर है, पर मेरी नहीं सुनती है। इनफैक्ट मंथन और आयु का यही प्लान है कि आयु मुझसे डिवोर्स ले और फिर ये दोनों शादी कर लें। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये लड़की मेरे बेटे से शादी कैसे करती है। मैं इन जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, अमीर लड़कों को फंसाने का ही काम है इनका, कविता जी ने आयु को घूरते हुए कहा। आयु ने उनकी बातें सुनकर कड़वाहट से सिर हिलाया और बोली, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं जैसे सिर्फ मैं ही मंथन से प्यार करती हूँ और इसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये भी मुझसे शादी करना चाहता है, और आपको ये लगता है कि मैं मंथन के पैसों के पीछे हूँ? तो आप शायद भूल रही हैं कि मंथन मेरे ही पति की कंपनी में जॉब करता है। मैं आरव के साथ भी रह सकती हूँ, वो तो उससे कई गुना ज़्यादा अमीर है। इस जैसे इंसान के साथ कोई लड़की नहीं रहना चाहेगी जो कपड़ों की तरह लड़कियों से रिश्ते बदलता है। तुम अच्छे से जानती हो कि एक डेढ़ साल से ज़्यादा तुम दोनों की शादी नहीं टिकेगी, तो सोचा वापस से उसी को फंसा लेती हूँ। मेरा बेटा ही पागल है जो एक तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहता है, वरना कोई भी इज्जतदार घर का लड़का तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा। कविता जी के मन में जो आ रहा था वो आयु को सुनाई जा रही थी। कविता जी की छोटी सोच देखकर आयु ने तंज भरे लहजे में कहा, मुझे आपकी सोच पर अफसोस होता है। खैर, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है और ना ही मैं आपके रिश्ते में दरार डालना चाहती हूँ। आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आयु उनसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि वो उन्हें जितना समझाएगी वो उल्टा ही उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। वहीं जैसे ही आयु ने जाने को कहा, आरव तुरंत उसके पास आ गया। आरव बोला, ठीक है फिर वापस अपने घर चलते हैं। आयु ने आरव की तरफ घूरकर देखा। उसने जानबूझकर वहां मामला बढ़ाया था ताकि वो आयु को वहां से निकाल दे। आयु ने चिढ़ते हुए कहा, तुम तो मुझसे कुछ मीटर दूर ही रहना, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी दादी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती हैं। आरव ने अनजान बनते हुए कहा, अब मैंने क्या किया? ट्रस्ट मी, मैं तो यहाँ अपने काम से आया था। अब क्या तुम उन सबका गुस्सा मुझ पर निकालोगी? हाँ, क्योंकि तुम्हें दूसरों को परेशान करने में इतना सुकून जो मिलता है, आयु बोली। वो इस सिचुएशन में एक मिनट भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, पर जाने से पहले आयु को अपने रिश्ते को लेकर भी क्लैरिटी चाहिए थी। आयु मंथन की तरफ पलटी और शांत गंभीर आवाज में बोली, मंथन, मैंने हमेशा हमारे रिश्ते को लेकर स्टैंड लिया है, फिर सिचुएशन चाहे कोई भी क्यों ना हो। तुम अच्छे से जानते हो, आरव से मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे घर वाले और आरव की फैमिली यही चाहते थे कि हम दोनों इस शादी में आगे बढ़ें, लेकिन मेरे मना करने के बाद किसी ने हमें फोर्स नहीं किया। मैं हमारे रिश्ते को लेकर हमेशा से क्लियर थी और मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुम्हें मेरे लिए भी स्टैंड लेना होगा। इससे पहले कि आयु आगे कुछ बोल पाती, मंथन के पिता अरुण जी ने बीच में दखल देते हुए कहा, ये क्या तुम उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो हमारी नहीं सुनता है। तुम यहां से जाने का कह रही थी ना, तो चुपचाप निकलो यहां से। आरव चाहता तो उन सबका मुंह एक झटके में बंद करवा सकता था, पर उसे भी इसी लम्हे का इंतजार था जब आयु सामने आकर मंथन से इस रिश्ते को लेकर फैसला लेने को कहे। आयु ने उन्हें अनसुना किया और मंथन से बोली, तो मुझे अच्छे से जानते हो मंथन, आज मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर खड़ी हूँ तो सिर्फ हमारे प्यार के लिए। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मुझे लेकर स्टैंड लेना होगा। अपने घर वालों को सच बताओ, मैंने आरव से शादी कोई जानबूझकर नहीं की। हमारी शादी एक गुंडे ने करवाई थी, मैं तो आरव को जानती तक नहीं थी। आरव और मेरे बीच शादी का रिश्ता बस नाम का है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई प्रॉमिस, फिर मैं फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मंथन ने आयु का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, आयु तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर इन्हें तुमसे प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मंथन के साथ देने पर आयु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वहीं ये सब सुनकर आरव को अपने सीने में दर्द जैसा महसूस होने लगा। उसे यही लगा था कि मंथन अपनी फैमिली के आगे ब्लैकमेल हो जाएगा। मंथन ने आयु का हाथ पकड़े हुए ऊपर किया और सख्त आवाज में बोला, मैं आयु से ही शादी करूंगा, आप लोगों से जो बनता है कर लीजिएगा। आयु अपना सामान पैक कर लो, जब तक ये यहाँ है हम यहाँ से किसी होटल में रहने चलते हैं। मंथन का फैसला सुनते ही उसका परिवार हैरान रह गया। अरुण जी जल्दी से बोले, अब क्या इस घर का लड़का किसी और की पत्नी के साथ होटल में रहेगा? आरव खुराना, कैसे आदमी हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से?
आरव खुद ऐसा नहीं चाहता था। उसने जवाब में कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अपना सही गलत खुद सोच सकती है। ठीक है मिसेस खुराना, तुम्हें मंथन के साथ होटल में रहना है तो बेशक जाओ। हाँ, फिर मुझे मत बोलना कि न्यूज़ चैनल वालों ने तुम्हारे खिलाफ क्या दिखाया है। तुम तो जानती हो ना, यहाँ के लोकल न्यूज़ वाले तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब तो सब जानते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो। ऊपर से उस दिन तुम जाकर उस न्यूज़ चैनल वाले से झगड़ा कराई हो, तो इनडायरेक्टली तुम्हारी उनके साथ दुश्मनी हो गई। अब जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए रेडी रहना। याद है ना, तुम्हारी फैमिली तुमसे नाराज है। उनकी नाराजगी का कारण जानती हो ना, तुमने मेरे साथ रहने का डिसाइड किया था। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझे छोड़कर वापस मंथन के पास चली गई हो तो उनकी नाराजगी और भी बढ़ जाएगी। हर तरीके से मंथन के साथ होटल रूम में जाकर रहने में तुम्हारा नुकसान है। आरव जानता था कि वो आयु को सीधे तरीके से समझाएगा तब वो कभी उसकी नहीं सुनेगी, तो उसने उसे डराना शुरू कर दिया। आयु ने आरव की तरफ देखकर सिर हिलाया और जवाब में कहा, क्या लगता है आरव, तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊंगी? मंथन और मेरे रिलेशनशिप में इस तरह के कॉम्प्लिकेशन पहले से थे, और ऊपर से तुम्हारे साथ शादी होने के बाद मेरी मुसीबतें बढ़ने वाली थी, ये मुझे अच्छे से पता था। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। फिर ठीक है, जो मर्जी करना है करो, मुझे ब्लेम मत करना, मैं बचाने नहीं आऊंगा, आरव ने जवाब दिया। मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी हेल्प करोगे। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद थी भी तो वो कुछ देर पहले तुमने खुद खत्म कर दी, आयु ने सार्केस्टिक अंदाज में कहा। अरुण और कविता को लगा था कि वो मंथन को मना लेंगे और उसे आयु को छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन मंथन उनकी सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से आयु की बातें और उसकी हिम्मत के आगे वो बेबस हो गए थे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो कविता जल्दी से भागकर किचन में गई। लौटते वक्त उसके हाथ में चाकू था।
वो सब आपस में बहस कर रहे थे, तभी कविता ने चाकू अपने गले पर लगाया और तेज आवाज में बोली, मंथन, इस लड़की को बोलो कि अभी यहाँ से निकले, वरना मैं अपना गला काटकर अपनी जान दे दूंगी। मेरे मरने के बाद फिर तुम दोनों करते रहना शादी। कविता के हाथ में चाकू देखकर मंथन और साक्षी दोनों घबरा गए थे। आयु को भी उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वहीं उनसे अलग आरव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। प्लीज मम्मी, ये सब मत कीजिए, हम बैठकर बात करते हैं, हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे, मंथन ने घबराई आवाज में कहा। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। बीच का रास्ता निकालने से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी, अपने जीते जी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे मरने की बात कर लेना, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी मौत की रिस्पॉन्सिबल ये लड़की ही होगी। फिर मैं देखती हूँ कि अपनी माँ के कातिल के साथ तुम कैसे खुश रह पाते हो, कविता ने भारी आवाज में कहा। उनको यकीन दिलाने के लिए उसने अपने गले पर हल्की सी चाकू की खरोंच लगा दी। उसके गले से खून आता देखकर वो और ज्यादा घबरा गए थे। कविता किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। मंथन ने अरुण की तरफ देखा और कहा, पापा प्लीज आप मम्मी को समझाइए। मैं उसे नहीं रोकने वाला, उल्टा उसके मरने के बाद मैं भी मर जाऊंगा, फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा, अरुण ने जवाब दिया। वो तो उल्टा उसकी माँ को बढ़ावा दे रहा था। कविता किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। साक्षी ने गहरी सांस ली और आयु की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा आयु, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मंथन को समझा तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम फिलहाल के लिए यहाँ से जा तो सकती हो ना। प्लीज अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। साक्षी की बात सुनकर आयु ने मंथन की तरफ देखा। मंथन भी अपनी माँ के आगे लाचार हो गया। उसने भी साक्षी की बात पर सहमति जताते हुए प्लीडिंग आईज से आयु की तरफ देखा। वो यही कहना चाह रहा था कि फिलहाल के लिए आयु का यहाँ रुकना सही नहीं है। आयु आरव का घर छोड़कर आई थी और उसके फैमिली के साथ भी उसकी अनबन चल रही थी। देखा जाए तो उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। आयु को वहां से जाने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मंथन अपने पेरेंट्स की जिद के आगे लाचार हो गया था। इससे उसे समझ आ गया था कि मंथन कभी उनके प्यार को लेकर स्टैंड नहीं ले पाएगा। अगर बात उनकी शादी की आई और उन्होंने इसी तरह मंथन को ब्लैकमेल किया तो वो कभी उससे शादी नहीं करने वाला था। मंथन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर आज तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, आयु ने भारी आवाज में कहा। मंथन फिलहाल आयु को किसी तरह की कमिटमेंट नहीं दे सकता था। मंथन ने धीमी आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी आयु, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमें दूर रहना होगा। और ये कुछ दिन हमेशा में बदल गए तो, आयु ने कांपती आवाज में कहा। आज उसे पहली बार अपने और मंथन के रिश्ते के लिए डर लग रहा था। आयु की बिखरी हुई आवाज काफी थी ये बताने के लिए कि मंथन के इनकार ने उसे किस हद तक तोड़ दिया था। वहीं आयु की बातों से मंथन भी समझ गया था, आज अगर उसने अपने परिवार के सामने आयु को नहीं चुना तो उनका रिश्ता सच में हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज मंथन का एक डिसीजन न सिर्फ मंथन और आयु के रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था, बल्कि आरव और आयु का रिश्ता भी मंथन के जवाब पर टिका हुआ था। आरव और आयु दोनों ही बेचैनी से मंथन की तरफ देख रहे थे। जहां आयु यही चाहती थी कि मंथन बस एक बार अपने परिवार वालों के सामने आयु के लिए स्टैंड ले, तो वहीं आरव के दिल में यही चल रहा था कि आज अगर मंथन ने उनका रिश्ता तोड़ दिया तो वो कभी आयु को खुद से दूर नहीं जाने देगा।